कृष्ण भवन अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति गुरुवार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर अनुष्ठान है कि प्रति गुरुवार को हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से कथा का श्रवण करेंगे। वास्तव में हम हमारे जीवन के सभी दुखों से यदि मुक्त होना चाहते हैं और भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं तो भगवान की कथा सुनना अति आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति यदि उत्पन्न करना चाहते हो, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हो, इस संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो कहते हैं, राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा भरो श्रवण फूट कान। भगवान से यदि प्रेम करना चाहते हैं और समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे कान रूपी दोने को भर भर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। बहुत ही सुंदर, इस कान को दोना कहा गया है क्योंकि भगवान की कथा अमृतमय है और अमृत अक्सर पीने में बहुत आनंद आता है। खैर, इस संसार में हम लोगों ने अमृत पीने की बात तो दूर रही, कभी देखा तक नहीं है, परंतु हमारे इस कलयुग के इस पृथ्वी का अमृत दूध को माना जाता है और दूध में भी चावल डालकर शक्कर डालकर उबाला जाए तो उसे खीर कहा जाता है और इस्कॉन में फेमस है यह खीर है। जो हमारा अमृत है तो खीर बहुत ही सुंदर है, हमारे सामने बाल्टी भरकर रखी हुई है, बहुत ही अच्छी होने के बाद भी वे पूरी बाल्टी तो हम नहीं पी सकते, इसलिए क्या करना होगा, उसे दोने में भर भर के रोज एक एक दोना या दो दो दोना पीना होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा अमृत तुल्य है, परंतु एक साथ यह कथा सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और यदि समय है भी तो ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने कान रूपी दोने से भर भर के यह कथा सुनते रहने चाहिए, और रोज रोज यह दोना न भरो तो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम प्रति गुरुवार को तो यह दोना भरिए और अपने हृदय को पवित्र कीजिए, जिससे भगवान में प्रीति उत्पन्न होगी और समस्त दुखों से निवृत्ति होगी। राम चरण रति जो चाहे, भगवान श्री रामचंद्र कृष्ण के साथ प्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं अथवा पद निर्वाण, इस संसार के दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं, उसे कथा सुननी होगी। तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा से हम प्रति गुरुवार को यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की कथा सुनेंगे, जिससे हम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, सभी दुखों से मुक्त भी हो सकते हैं और भगवान से प्रेम उत्पन्न करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है, इस प्रसंग को स्पर्श किया था इसके पहले, एक महीना हो गया है, एक महीने पहले श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के पंचम अध्याय में दक्ष प्रजापति की कथा है। दक्ष प्रजापति का नाम दक्ष इसलिए था क्योंकि दक्ष प्रजापति पुत्र उत्पन्न करने में दक्ष थे। दक्ष प्रजापति ने एक साथ 1000 पुत्र उत्पन्न किए, क्षमा कीजिए 10,000 पुत्र, और दक्ष प्रजापति के जब 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, वास्तव में यह ब्रह्मा जी की आज्ञा थी दक्ष प्रजापति को कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तुम संतान की उत्पत्ति करो। जब अपने प्रपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा दक्ष प्रजापति ने ग्रहण की और ग्रहण करके 10,000 पुत्र को जन्म दिया, दक्ष प्रजापति अपने 10,000 पुत्र को गृहस्थ बनाना चाहते थे ताकि ये 10,000 पुत्र किसी पत्नी के साथ विवाह करें और वे भी अपने अपने बच्चे, एक एक बच्चा 10,000 को पैदा करें, इस प्रकार से यह संसार प्रजा से भर जाए, यह प्लान था दक्ष प्रजापति का, अपने पुत्रों को एकदम अच्छा गृहस्थ बनाना चाहते थे। तो दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को जन्म देकर सोचा कि यदि गृहस्थ जीवन ठीक से बिताना हो तो बच्चों को तपस्या सिखाने की आवश्यकता है, इसलिए दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्रों को बहुत ही छोटी सी उम्र में, 4 या 5 साल की उम्र में तपस्या करने के लिए वन में भेजा। पिछली बार में कहा था संसार में हमारे पुत्रों को, बच्चों को भोग भोगना सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में हम देखते हैं कई माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं किस प्रकार खाना चाहिए, किस प्रकार कपड़े पहनना चाहिए, वास्तव में यह सब सिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कार्य तो ये सब बालक हजारों जन्मों से करते आए हैं। हमारे बच्चों को का जीवन यदि उज्जवल करना चाहते हैं तो उसे तपस्या सिखानी चाहिए, किस प्रकार भोगों से विरक्त हुआ जाए, वैराग्य प्राप्त किया जाए, यह शिक्षा हमारे पुत्रों को देनी चाहिए। यद्यपि दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा आसक्त था और अपने पुत्र को गृहस्थी के झमेले में गिराना चाहता था, लेकिन फिर भी दक्ष प्रजापति को यह बुद्धि थी कि यदि मैं मेरे पुत्रों के जीवन को उज्जवल करना चाहता हूं तो उसे तपस्या सिखाना है, और तपस्या के लिए वन में भेजा गया। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र तपस्या करने के लिए गए और बहुत भारी तपस्या उन्होंने संपन्न की,
और 10,000 पुत्र तपस्या करके ऑलमोस्ट पवित्र हो गए थे। तपस्या करने से यह शरीर पवित्र होता है, तो 10,000 पुत्र ऐसे तपस्या करने से हृदय पवित्र हो चुका था, परंतु पिता की आज्ञा अनुसार तपस्या करके वे सब लोग वापस घर पर लौट रहे थे। और घर पर लौटकर पिताजी ने सभी 10,000 लोगों के लिए, 10,000 पुत्र के लिए 10,000 कन्या तैयार रखी थी विवाह कराने के लिए। बच्चे सुनिए ध्यान से, हरे कृष्णा 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 हरे, ये बच्चों की ही कथा है इसलिए ध्यान से सुनिए। तो 10,000 दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र तपस्या करके वापस घर पर लौट रहे थे, तो उस वक्त भगवान के मनोअवतार नारद मुनि जो 2400 घंटा अपनी वीणा पर भगवान के नाम का भजन करते रहते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, इस संसार के सबसे बड़े प्रचारक यदि कोई है तो वह नारद मुनि। केवल पृथ्वी में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जन लोग मर लोग तप लोग कभी नरक में भी जाते हैं प्रचार करने के लिए, प्राय नारद मुनि घूमते रहते हैं प्रचार करते रहते हैं और सबसे बड़े सक्सेसफुल प्रचारक हैं। तो नारद मुनि ने सोचा कि प्रचार करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, एक साथ 10,000 लोग कहां से मिलेंगे, सबसे पहले यहां पर 10 लोगों को भी एकत्रित करना, ये तो हमारे प्रभु जी जानते होंगे कितनी मेहनत करके लोग एकत्रित होते हैं। नारद मुनि ने सोचा, एक तो यूथ प्रीचिंग है, सब यूथ है, बूढ़ा कोई नहीं है, क्योंकि अक्सर जो बूढ़े हो जाते हैं वे सिद्धांत को ठीक से ग्रहण नहीं कर सकते। नारद मुनि ने सोचा कि सब लोग यूथ है, जवान है, और 10,000 लोग एक साथ एक ही स्थान में है, और यदि मैं देरी करता हूं तो ये लोग घर पर पहुंच जाएंगे और उनके पिताजी कन्या को लेकर तैयार रखें विवाह करा देंगे, और विवाह करने के बाद तो आप सब जानते हो भजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वास्तव में वैसे तो चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश, चार प्रकार के वर्ण और आश्रम भगवान के द्वारा ही निर्माण किए गए हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास, परंतु भजन करने के लिए अनुकूल आश्रम यदि कोई है तो है ब्रह्मचारी आश्रम। भगवान ने एक जगह कहा है कि सभी व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनना चाहिए, यदि भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते हैं तब जाकर गृहस्थ बनिए, परंतु गृहस्थ बनने के बाद भी गृहस्थ ब्रह्मचारी तो बनना ही है। ब्रह्मचारी बनकर भजन अच्छी तरह से किया जा सकता है। प्रहलाद महाराज बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं। प्रहलाद महाराज जब अपने गुरुकुल में पढ़ते थे, 5 साल के बालक थे, असुर कुल में जन्म लिए थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त थे। एक दिन वे अपने सभी मित्रों को उपदेश देते हैं, कौमारेत आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। प्रहलाद महाराज अपने अपने मित्रों को उपदेश देते हैं कि यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, 84 लाख के चक्कर काटने के बाद कुछ साल के लिए यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, तो इस मनुष्य जीवन में भजन कर लेना चाहिए, और भजन भक्ति भी बूढ़े होकर नहीं, कुमार आचरित प्राज्ञो कुमार अवस्था से ही भजन करना चाहिए, क्योंकि यदि विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद ये भजन भक्ति बहुत मुश्किल है। वे कहते हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रण, यदि तुम कुमार अवस्था में ब्रह्मचारी अवस्था में भजन नहीं करोगे तो जब विवाह होगा और विवाह होकर एक बहुत ही अच्छी कन्या अच्छी पत्नी को घर पर लेकर आओगे, बहुत ही सुंदर पत्नी है, बेडरूम में केवल आप और अपनी पत्नी बैठे हैं और मीठी मीठी बातें वह पत्नी करती है, सभी आज्ञा का पालन कर रही है, ऐसे समय में कहां से भगवान याद आएंगे, कथम। नहीं आएंगे। और सुहे सुतत स्नेह शीतल शिशु नाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। और इतना ही नहीं, विवाह होने के बाद कुछ दिनों के बाद बच्चे होंगे, फिर उस बच्चे का पालन पोषण करो, स्कूल में पढ़ाओ, ये करो वह करो, उसका विवाह करो, बच्चे के बच्चे। इस प्रकार से यह झमेला इतना बढ़ता जाएगा कि एक दिन मृत्यु आकर खड़ी रह जाएगी, भजन नहीं कर पाओगे, जीवन बीत जाएगा। और जब समय निकल जाएगा तब पछताने से कोई फायदा नहीं है। मन पछताइए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत को खाकर चली जाती है दाने को, तब पछताने से क्या फायदा। जीवन बीत जाने के बाद यदि पछतावा भी हो तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी होनी चाहिए, बचपन से ही भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और ब्रह्मचारी व्रत, ब्रह्मचारी बनकर भजन करना ये अति आवश्यक अनुकूल है भजन में। और यदि ऐसा नहीं तो ये फंसकर व्यक्ति मर जाएगा। दृष्टांत देते हैं, त्यजे तो कोशिश को देवे हो मान कर्माणि लोभन अनुतृप्त काम। जैसे रेशम का कीड़ा अपने मुख से लार ग्रंथि निकालकर अपना घर बनाता है, जानते हैं आप, अपने मुख से ही लार निकालता है और अपना घर बनाता है अपने आजू बाजू में। और ऐसा घर बनाते बनाते एक दिन ऐसा आता है कि वो रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है, एक दरवाजा या एक बारी एक विंडो भी नहीं छोड़ता है ताकि एक वीक में एक बार प्रवचन में जा सकूं, नहीं छोड़ता है, फंस जाता है। बाहर निकलना होता है लेकिन तड़प करके मर जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जो यह झमेला बनाते हैं अपने आप से ही बनाते हैं, अपनी बुद्धि से। ब्रह्मा जी हमें कहने नहीं आए कि आप विवाह कर लो, बच्चे करो। हम हमारी बुद्धि से यह झमेला तैयार करते हैं और इसको पालने पोसने में हमारा जीवन बिता देते हैं। तो ब्रह्मचारी आश्रम भजन करने के लिए बहुत अनुकूल है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। उनमें से एक गुरु एक कुवारी कन्या थी। एक समय भगवान दत्तात्रेय विचरण कर रहे थे अवधूत की तरह, तो उन्होंने देखा कि एक घर पर एक कन्या को मंगनी करने के लिए, देखते समाज में जब किसी की मंगनी करनी होती है तो सबसे पहले उस लड़की को देखने जाते हैं। तो यहां पर उस लड़की को कुछ मेहमान देखने के लिए आए थे, घर पर कोई नहीं था और यह लड़की कुछ घर पर काम कर रही थी। लड़की ने देखा कि अचानक घर पर मुझे देखने के लिए मेहमान आ गए हैं, तो वे रसोई घर में आई और मेहमानों के लिए कुछ दूध या इत्यादि बनाने के लिए तैयार हुई, परंतु देखा कि घर पर कुछ बनाया हुआ नहीं है। तो दूध उबल रहा था, दूध में कुछ मसाला डालने के लिए, वो मसाला पीसने के लिए आप देखते हो गांव में क्या कहते हो, मूसल होता है, मूसल से उसे कूटते हैं। अब बहुत बड़ा धर्म संकट, यदि बाहर मेहमान को पता चल जाए कि यह कुछ पीस रही है तो मेहमान सोचेंगे इस घर में लोग इतने आलसी हैं, पहले से अरेंजमेंट करके नहीं रखते हैं, ऐसा होता है। आपने देखा होगा या नहीं, लेकिन हमने तो देखा था। मैंने एक स्टैंडर्ड फेस किया था किसी के घर पर, मेरी बात कर रहा हूं, जब मैं किसी के घर पर लड़की देखने के लिए जाता था तो मुझे यह जज करना होता था यह घर के लोग आलसी है या नहीं। तो मैं देख रहा था यदि कोई नाश्ते में या कुछ पीने के लिए थम्सअप या आइसक्रीम लेकर आते हैं तो समझ लेना चाहिए इस घर के सब लोग आलसी हैं। यदि कोई फ्रूट जूस या कुछ हाथ से बनाई हुई वस्तु लेकर आते हैं तो समझ जाना चाहिए मेहनत करने वाले लोग हैं। खैर, तो इस प्रकार से यदि उस मेहमान को पता चल जाए कि ये अभी मसाला पीस रही है तो वे सोचेंगे कि घर के लोग बहुत आलसी हैं। तो बाहर के लोगों को पता नहीं लगाना है, और यहाँ पर वो मसाला पीस रही थी, परंतु उनकी चूड़ी, उनके हाथ में कई सारी चूड़ियां पहनी हुई थी, तो चूड़ियों की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने एक चूड़ी निकाल कर बाजू में रखी, फिर भी आवाज आ रही थी। दूसरी चूड़ी निकाली, तीसरी निकाली, अंत में केवल दो चूड़ी बची, लेकिन फिर भी दो चूड़ी की आवाज आ रही थी। फिर उसने एक चूड़ी निकाल कर फेंक दी, केवल एक ही चूड़ी बचाई, तब आवाज आना बंद हो गया। दत्तात्रेय इतना देख लिए, उस लड़की को अपना गुरु बनाकर प्रणाम करके वहां पर चल दिए। दत्तात्रेय ने इससे कौन सा उपदेश लिया, यह सुनिए। भगवान दत्तात्रेय ने यह देख उपदेश लिया कि यदि 10-15 जन एक साथ में एक घर पर रहते हो तो कभी शांति नहीं हो सकती। 10-15 चूड़ी एक साथ रहे और शांति हो, ये गलत बात। 5 चूड़ी भी एक साथ रहने से शांति नहीं हो सकती, अंत में 2 चूड़ी भी एक साथ रहकर शांत नहीं हो सकता है। यदि शांत रहना है, भजन करना है, भजन के लिए अनुकूल वातावरण रखना है, तो केवल एक ही चूड़ी रखिए, अर्थात ब्रह्मचारी रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे। तो इस बात को नारद मुनि जानते थे कि भगवान का भजन करने के लिए ब्रह्मचारी रहना बहुत आवश्यक है। तो नारद मुनि ने देखा कि यदि मैं वहां पर जाने में देरी करता हूं तो ये गृहस्थ बन जाएंगे। तब नारद मुनि भगवान के मनो अवतार ब्रह्मा जी के गोद से नारद मुनि का जन्म हुआ है। और नारद मुनि का जन्म जब हुआ तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कहा कि हे नारद, चूंकि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए तुम मेरी बात की आज्ञा का पालन करो। नारद मुनि को कहा कि तुम विवाह करो और बच्चे उत्पन्न करो। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को कहा कि पिताजी, यद्यपि आप हमारे पिता हो, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, परंतु इस संसार की घर गृहस्थी के झमेले में पड़कर फंसकर मैं भगवान की अमृतमय भक्ति को छोड़ दूं, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो वैसे ही होगा जैसे अमृत चाड़ी विष मांगे, यही बड़ो मूर्ख। अमृत को छोड़कर विष को धारण करना ये तो मूर्ख का काम है। मैं मूर्खाई नहीं करना चाहता, मैं भजन नहीं करूंगा। इस संसार में बहुत लोग उपदेश करते हैं, आप विवाह करो, विवाह करने के बाद भक्त बच्चे पैदा करना। कम से कम भक्त बच्चे पैदा करने के लिए विवाह करो, क्या भरोसा है बच्चे भक्त ही होंगे। अक्सर देखा गया है कि भक्तों के जो बच्चे होते हैं वे भक्त नहीं होते हैं। हमारे गुजराती में कहावत है, दिए के पीछे अंधेरा। अक्सर देखा गया है दिए के पीछे अंधेरा होता है, प्रकाश नहीं होता। तो नारद मुनि को कहा गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि आप संतान की उत्पत्ति करो। नारद मुनि ने ना कह दिया। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, विचारिए, यदि नारद मुनि विवाह कर लिए होते या बच्चे भी पैदा किए होते तो कम से कम 10-15 बच्चों को भक्त बनाते, परंतु विवाह न करने पर नारद मुनि हजारों हजारों लोगों को भक्त बना दिए। 10 प्रजापति के 1100 पुत्रों को तो 5 मिनट में भक्त बना दिए, और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सभी के गुरु नारद मुनि हैं। तो नारद मुनि भगवान के महान परम भक्त, बहुत बड़े प्रचारक, और यूथ प्रीचिंग करने के लिए निकल पड़े हैं। उस जंगल में आए जिस जंगल से वापस लौट रहे थे दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र, और रास्ते में ही नारद मुनि आकर खड़े रह गए। 10,000 पुत्रों ने प्रणाम किया। नारद मुनि ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? तो 10,000 पुत्र ने कहा कि अब हम घर पर जाकर सृष्टि उत्पन्न करेंगे। प्रजा की उत्पत्ति करना, विवाह करके बच्चों को पैदा करना, उसे शास्त्रीय भाषा में सृष्टि करना कहते हैं। तो 10,000 पुत्रों ने कहा, सृष्टि करने के लिए जा रहे हैं, विवाह करेंगे। नारद मुनि ने कहा, आप विवाह करोगे, आप सृष्टि उत्पन्न करोगे? नारद मुनि ने सोचा कि ये 10,000 लोगों को किस प्रकार का उपदेश दिया जाए ताकि ये 10,000 तुरंत भक्त बन जाए। और ये शास्त्र का बहुत ही सुंदर, भागवत का ये एक विलक्षण उपदेश है कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र को भक्त बनाने के लिए, भक्त नहीं ब्रह्मचारी बनाने के लिए नारद मुनि को 10 मिनट भी नहीं लगी। नारद मुनि वे 10,000 लोगों के सामने 10 मिनट भी नहीं खड़े रहे, 3-4 मिनट में 10,000 को भक्त और ब्रह्मचारी बना दिया। नारद मुनि ने केवल 10 पहेली का जानते हैं, इंग्लिश में पजल कहते हैं। नारद मुनि ने 10,000 पुत्र को 10 पजल पहेली पूछी, 10 प्रश्न पूछे। नारद मुनि ने कहा कि आप इस प्रश्न के उत्तर को जानते हो, यदि आप इस प्रश्न के उत्तर को ही नहीं जानते हो तो सृष्टि करने से क्या फायदा, क्या सृष्टि करोगे तुम। तो ये 10 प्रश्न सुनकर दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र भक्त बन गए और ब्रह्मचारी बन गए। वहां से ही वापस लौट गए, पिताजी के घर पर नहीं गए, पूछने भी नहीं गए कि पिताजी हम नहीं आएंगे। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना तगड़ा उपदेश नारद मुनि ने दिया। ताइए वह उपदेश हम प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कितने श्लोक होंगे। सबसे पहली नारद मुनि ने कहा, वाच चात हरियश्वा कथम स्त्रक्षथ वै प्रजा अदृष्टवांत भूयो युजं बालिशा वत पालका। आप लोग सृष्टि करने के लिए जा रहे हो, परंतु आप इस पृथ्वी के अंत को जानते हो। आप पृथ्वी में सृष्टि उत्पन्न करोगे, परंतु जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हो इसके एंड, इसके अंत को जानते हो। एक पहली सी थी, नारद मुनि को पृथ्वी से कोई मतलब नहीं था, परंतु पहली में ऐसा होता है। अब मैं क्या बताऊं, मुझे पहली याद नहीं आ रही है। पहली में ऐसा होता है, शब्द कुछ और होते हैं, कुछ वस्तु और दिखाई जाती है, उसके पीछे अलग भाव होता है। तो नारद मुनि ने कहा कि एक ऐसी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के अंत को आप जानते हो। बस नारद मुनि को यह कहना था, क्योंकि 10,000 दक्ष प्रजापति के जो पुत्र थे तपस्या करके आए थे, और तपस्या करने से हृदय पवित्र हो गया था और ज्ञान की खिड़की खुल गई थी। नारद मुनि के प्रश्न पूछने पर वे उत्तर समझ गए। और यहां पर मैं 10 बार भी यदि प्रश्न पूछूं, मान लीजिए आपको पूछ रहा हूं, इस पृथ्वी के अंत को जानते हो आप, इस पृथ्वी का अंतिम केंद्र, अंतिम प्लेटफॉर्म क्या है जानते हैं। हमने एक महीने पहले पूछा था कि यदि जानते हो तो आप बता सकते हैं, एक महीने के बाद भी इसका उत्तर हमें नहीं मिलता है। भागवत पढ़ लेने के बाद भी कुछ लोगों को इसका उत्तर नहीं मिलता है। तो नारद मुनि के इस प्रश्न का उत्तर दक्ष प्रजापति के पुत्र समझ गए। दक्ष प्रजापति के क्या पुत्र क्या समझे, सबसे पहले भू क्षेत्रम जीव संज्ञम। नारद मुनि जो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी या शरीर है। भू क्षेत्रम जीव संज्ञम, यह शरीर को पृथ्वी की संज्ञा दी गई है। और यत अनादि निज बंधनम, नारद मुनि ने दो चीज पूछी। एक ऐसी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंतिम केंद्र को, अंतिम बिंदु को आप जानते हो, तो ये पृथ्वी या शरीर है, और इस पृथ्वी का अंत कहां होता है, इस शरीर का अंत कहां होता है, यह आप जानते हो। इस शरीर का अंत कहां पर होता है, तो कहते हैं यत अनादि निज बंधनम। यह समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम कौन है। सब लोग जानते हैं कौन है, आत्मा है। कौन है, हम आत्मा है। और निज बंधन, यह जो शरीर है, यह शरीर आत्मा का अर्थात हमारा बंधन है। तो कहते हैं भू क्षेत्रम जीव संज्ञम यद अनादि निज बंधनम, आत्मा के ऊपर अनादि अनादि काल से बंधन लगा हुआ है, तो इस बंधन से मुक्त कब जीव होता है? जब जीव इस शरीर के बंधनों से मुक्त होता है तब इस उसका अंतिम केंद्र बिंदु मिल जाता है। तो भगवान से विमुख होकर जीव जब इस भौतिक प्रकृति में पटका जाता है तब अपने कर्मों के अनुसार कई प्रकार के शरीरों को धारण करता है। आत्मा जो है कई प्रकार के शरीरों के बंधन में बंध जाती। यद्यपि आत्मा स्वतंत्र है परंतु यह देह जो है उसकी स्वतंत्रता को काट देता है और फंस जाता है। एक से एक बंधन इस आत्मा के ऊपर लगाए जाता है, जाते हैं माया के द्वारा। सबसे पहले 84 लाख प्रकार के शरीर के बंधन इस आत्मा को दिए जाते हैं और एक एक शरीर में कई सारे बंधन। जैसे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ आत्मा को, जीवात्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ तो जन्म से लेकर माता पिता का बंधन, मन बुद्धि अहंकार का बंधन, स्कूल का बंधन, कॉलेज का बंधन, धन का बंधन, पत्नी का बंधन, पुत्र का बंधन, घर का बंधन, समाज का बंधन, एक से एक राज्य का बंधन, देश का बंधन, गवर्नमेंट का बंधन, ये सभी बंधनों में ये आत्मा बंध जाता है और इस बंधन के कारण ही ये आत्मा दुखी होती रहती है, जीवात्मा दुखी होता है। इस संसार में पूछा जाए कि दुख का कारण क्या है, ये तो सच बात है सब लोग दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, कितने लोग सुखी हैं? इस संसार में सब लोग दुखी हैं क्योंकि संसार बनाने वाले ने ही तो कहा है दुखालय मशाश्वतम, हे अर्जुन मामु पेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम। ये संसार मेरे द्वारा बनाया गया है इसलिए इस संसार को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो इस संसार का दो गुण है, एक तो यह संसार अशाश्वत है इसका प्रलय होता है और एक दुखालय है दुखों का सागर। दुखों का सागर का अर्थ जानते हैं? इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। आलय ही दुखालय, आलय का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र। जैसे समुद्र में पानी के अलावा कुछ नहीं होता है वैसे इस भौतिक संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। परंतु इस संसार में इतने मूर्ख लोग, इतने दुर्भाग्यशाली लोग भरे हुए हैं कि इस दुखालय संसार से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। मैं इतना धन कमा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये पत्नी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, इतने बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, अच्छा घर मिल गया तो सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी मिल गई तो सुखी हो जाऊंगा, ये सब प्राप्त करने में लोग सुखी हो जाऊंगा ये सोचते हैं। परंतु जब तक यह दुखालय संसार में व्यक्ति पड़ा हुआ है और यह सभी बंधनों में बंधा हुआ है व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। एक से एक बंधन। आप कल्पना कीजिए आपके दोनों हाथ बांध दिए जाए, दोनों पांव बांध दिए जाए और मुंह बांध दिया जाए, फिर आपको कितना भी सोना दिया जाए, गहना दिया जाए, सब कुछ दिया जाए, क्या आप सुखी हो सकते हो? नहीं हो सकते क्योंकि बंधन है। जब तक ये बंधन से मुक्त नहीं होंगे तब तक सुख नहीं मिल सकता है। नारद मुनि ने यही पूछा कि तुम प्रजा की उत्पत्ति करना चाहते हो, संतान की उत्पत्ति करना चाहते हो, परंतु जीवात्मा का इस शरीर का अंत कहां पर आता है यह तुम जानते हो? इस शरीर का अंत कब होता है तुम जानते हो? क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, भजन नहीं करते हैं, पाप करते हैं और पाप करने से नरक में उसे भेज दिया जाता है और नरक के बाद 84 लाख की योनि में चढ़ाया जाता है, कभी गाय तो कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता, इस प्रकार से अलग अलग शरीर धारण करता है, फिर मनुष्य, फिर 84 लाख के चक्कर में वे घूमता रहता है। तो ये 84 लाख के चक्कर से व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है क्या तुम यह जानते हो? नारद मुनि ने पूछा, इस 84 लाख के चक्कर से व्यक्ति भगवान का भजन करके ही मुक्त हो सकता है। वास्तव में इस संसार में दुख है कि हम इस बंधन में फंसे हुए हैं और सब लोग इस बंधन का अनुभव करते हैं। और सब बंधन छोड़ दीजिए, भजन भक्ति में आकर भी कितने बंधन हैं। बिचारी माताएं बहुत बहुत भजन करना चाहती हैं, परंतु अपने पति के बंधन में, अपनी सास के बंधन में बंधी हुई है। हमारे प्रभु लोग भी बहुत बहुत भजन करना चाहते हैं, परंतु 1 महीने के 5,000 रुपए नहीं कमाएंगे तो घर नहीं चलेगा, भजन नहीं होगा। मजबूर होकर धन कमाना पड़ता है, ये एक बंधन है, मजबूत बंधन है। कभी कभी देखा गया है पति पत्नी बहुत आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, और पत्नी जो होती है पति को बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। सुबह निकल जाते हैं ऑफिस में, परंतु ये दोनों के बीच में इतना झगड़ा होने के बाद भी बंधन इतना कड़ा है कि वह पति शाम को घूमकर उसी घर में वापस लौटेगा, बाजू के घर में नहीं जाएगा। इतना बंधन तगड़ा है, मजबूत है, यद्यपि यह दिख नहीं रहा है। एक जगह तो कहा गया है कि जेल में जो लोहे की कड़ी के द्वारा बंधन में बांधा जाता है, उस बंधन को एक बार तोड़ सकते हैं, परंतु पत्नी और बच्चों के द्वारा जो बंधन बांधा गया है पुरुषों को, उस बंधन को तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। यद्यपि यह बंधन दिखता नहीं है, परंतु सूक्ष्म बंधन। हम सब इस बंधन में फंसे हुए हैं। यदि इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वास्तविक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान का भजन करना चाहिए। और भगवान की भक्ति का अर्थ है, मैं यहां पर बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये भक्ति। ऐसा नहीं है कि हिमालय पर चले जाओ, नंगे पैर एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करो, ये भजन नहीं है। भजन का सबसे पहला अंग है श्रवण करना, भागवत भगवान की कथा सुनना, यह भजन। और भक्तों के अभाव में जब भक्त नहीं होते हैं, श्रवण करने का मौका नहीं होता है, तब भगवान का नाम लेना, यह भजन। हरे कृष्णा कृष्णा हरे। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने सबसे पहला शॉट दिया, सबसे पहला प्रश्न दिया कि तुम जीवन के लक्ष्य के बारे में नहीं जानते हो। यह मनुष्य जीवन मिला है यह सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए। इस भौतिक प्रकृति में व्यक्ति बंधनों में फंसा है, और 84 लाख की योनि में एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिस योनि में व्यक्ति यह बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर देह मिला है यह बंधनों से मुक्त होने के लिए, और तुम बंधनों में फंसने जा रहे हो। वास्तव में यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, परंतु तुम उस लक्ष्य को ही नहीं जानते हो, सृष्टि क्या उत्पन्न करोगे। प्रभुपाद जी बहुत ही कड़े शब्द में कहे हैं कि संसार में वही व्यक्ति विवाह करने के योग्य है, इस संसार में वही व्यक्ति पुत्र पैदा कर सकते हैं जो अपने पुत्र और पत्नी को भक्त बना सकता हो। यदि आप अपने पुत्र को भक्त नहीं बना सकते हो, तो पुत्र पैदा करने का आपको कोई अधिकार नहीं। और भक्ति सिद्धांत महाराज तो यहां तक कहते हैं, यदि आप सक्षम हो कि अपने पुत्र को भक्त बना सको, तो एक नहीं सैकड़ों पुत्र उत्पन्न करो, परंतु भक्त बनाने की जिम्मेवारी एक पिता पर है। और यदि आप अपनी पत्नी को भक्त बना सकते हो, तब ही विवाह करो, नहीं तो विवाह करने की योग्यता आप में नहीं। क्योंकि पत्नी जो होती है पति के आश्रित होती है। तो जीवन का लक्ष्य ये जानना चाहिए। कई पिता लोग कहते हैं, हम तो हमारे पुत्र को भक्त बनाना चाहते हैं, परंतु हमारा पुत्र भक्त नहीं बनता है, हम क्या करें। परंतु सबसे पहले उस पिता को यह जानना चाहिए कि क्या मैं भक्त हूं। अक्सर देखा गया है कि स्वयं भक्ति नहीं करते हैं और अपने पुत्रों से भक्ति करवाना चाहते हैं, यह कभी भी संभव नहीं होगा। हमारे पुत्र, हमारे आश्रित लोग तभी भजन करेंगे जब हम कुछ भजन करके दिखाएंगे। पुत्रों को भक्त बनाने के लिए, पत्नी को, समाज को भक्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें भक्त बनना होगा, और भक्त बनकर भजन करके या सभी बंधनों से मुक्त होकर वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद मुनि के पहले प्रश्न का यह उत्तर हुआ। अब नारद मुनि दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि तथैक राष्ट्रम पुरुषम, तुम सृष्टि उत्पन्न करने जा रहे हो, क्या तुम जानते हो कि एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है? क्या तुम उस राष्ट्र के बारे में जानते हो? क्या तुम उस पुरुष के बारे में जानते हो? हम देखते हैं इस संसार में सौराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, हजारों हजारों सैकड़ों लोग हैं, परंतु कहते हैं कि एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है। जानते हो उसके बारे में? यदि इतनी छोटी सी बात को नहीं जानते हो तो क्या पुत्र उत्पन्न करोगे, क्या विवाह करोगे? धिक्कार है तुम्हें इस छोटी सी बात को नहीं जानकर इतना बड़ा कार्य करने के लिए निकले। तो इस प्रकार से जब नारद मुनि ने कहा तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र इस पहेली को किस प्रकार से समझे, हम अगले गुरुवार को जानेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे। परंतु आप सब लोगों को एक मौका दिया जा रहा है, तथेक राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है, तो वह राष्ट्र कौन है और वह पुरुष कौन है, ये अगले गुरुवार को मैं आपको पूछूंगा। किसका उत्तर सही है ये हम देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? इस प्रवचन में यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो, या और भी भक्ति में प्रगति करने के लिए जो भी आपकी बाधाएं हैं, जो भी प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। उसका उपाय श्रवण और कीर्तन ही है। यह सबसे प्रथम मुख्य बात है कि सबसे पहले व्यक्ति को ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए, परंतु यदि वह ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ जीवन बिता रहा है, तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 25 साल तक उसे कमाना चाहिए, और कमाते हुए अपना काम धंधा करते करते या नवदा भक्ति करते हुए अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। जब उनका 50 साल हो जाता है तब वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। तो गृहस्थों के लिए यही उद्देश्य है कि अपने पत्नी अपने पुत्रों के साथ वे स्वयं भगवान की भक्ति करें, कम से कम प्रभुपाद जी के अनुसार 16 माला जप करें, 4 नियम का पालन करें, और प्रति रविवार को इस्कॉन मंदिर में जाएं। 25 साल तक इस प्रकार से करते रहोगे तो 50वें साल में आपकी स्थिति ऐसी बन जाएगी ताकि आप पूर्ण भजन कर सको ये, और तब तक आपके पुत्र भी बिजनेस में इत्यादि लग जाएंगे। ये पूरा शास्त्र का सेटिंग है ये। तो गृहस्थों को नर्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र खोलकर देख लीजिए, ब्रह्मचारियों से ज्यादा गृहस्थों को भगवान प्राप्त हुए हैं। जैसे अम्बरीश महाराज हैं, और भी भगवान राजा दशरथ गृहस्थी तो थे, नंद बाबा, वसुदेव जी, मनु शत्रुपा इत्यादि। गृहस्थ और ब्रह्मचारी में क्या अंतर है, संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं। दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, परंतु क्या अंतर है? जैसे भाईंदर से किसी को मीरावड मंदिर में जाना हो तो दो रास्ते हैं, एक तो मोटरसाइकिल से इसके ऊपर बैठकर जाया जाए, और एक ट्रक में जाना है। यदि मोटरसाइकिल से आप जाते हो यहां से मीरा रोड मंदिर में, हमारे इस्कॉन में, तो बहुत ही जल्द किसी ट्रैफिक के बीच से निकलकर आप आराम से जल्दी पहुंच जाओगे, और ट्रक से जा रहे हो तो ट्रैफिक भी बहुत होगी, पिकअप बहुत कम होती है ट्रक में, धीरे धीरे चलती हैं और ट्रैफिक वाले रुका देते हैं, चेक पोस्ट आता है, तो ट्रक भी उस मंदिर में पहुंचेगा परंतु उस मोटर बाइक की तुलना में लेट पहुंचेगा। तो जो टू व्हील मोटरसाइकिल एक ब्रह्मचारी जीवन है और गृहस्थ का झमेला जो है वो है ट्रक। परंतु ट्रक वाले को एक बहुत बड़ी सेफ्टी यह है, यद्यपि मोटरसाइकिल बहुत जल्द पहुंच जाती है परंतु एक्सीडेंट होने का भय है, थोड़ी भी ठोकर लग गई तो स्लिप होकर बिल्कुल मृत्यु भी हो सकती है। परंतु ट्रक वाले को कितना भी एक्सीडेंट करे सामने वाले का नुकसान है, ट्रक वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो उसी प्रकार यदि कोई ब्रह्मचारी बन गया है परंतु ब्रह्मचारी जीवन में ब्रह्मचारी को यदि स्त्री की कामना होने लगी, धन की कामना होने लगी, तो वह न तो घर का न तो घाट का रहेगा, फिसल जाएगा। और गृहस्थ भले वे झमेले को लेकर, पत्नी पुत्र समाज को लेकर ट्रक से चल रहा है परंतु ये कभी स्लिप होने का भय नहीं है। हम गृहस्थों को कभी भी पतन होने का, स्लिप होने का भय नहीं है, चलेगी धीरे 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 गाड़ी चलेगी। तो ये अंतर है ब्रह्मचारी और गृहस्थ में। नहीं, पति के आज्ञा अनुसार ही पत्नी को रहना चाहिए। पत्नी यही कर सकती है कि अपने पति को मनाए, और पति नहीं मानते तो भगवान को प्रार्थना करे, बस स्त्री यही कर सकती है और कुछ नहीं। पति की आज्ञा बहुत आवश्यक है। इसलिए महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं, अबला तेरी यही कहानी, दिल में दर्द और आंखों में पानी। भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जो भगवान हमारे हृदय में है वह भगवान उस पति देव के हृदय में भी तो बैठे हैं परमात्मा के रूप में। तो यहां भगवान को मनाइए, बस वे ऐसी बुद्धि डालेंगे कि सामने वाला की बुद्धि घुमा देंगे। ये और कोई प्रश्न है?